ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद संख्या 7 अध्याय संख्या 2 श्लोक संख्या 59 और 60। 60वां श्लोक पढ़ता हूँ, मेरे पीछे दोहराइए। अतः शोचत माम यूयम् परम चात्मानमेव वा कात्मक परोवात्र स्वपराभिनिवेशेन वा स्वपराभिनिवेशेन विना ज्ञानेन देहिनाम्। अतः शोचत माम यूयम् परम चात्मानमेव वा आत्मकः परो वात्र स्वीयः पारक्य एव वा स्वपराभिनिवेशेन विना ज्ञानेन देहिना। अतः शोचत माम यूयम् परम चात्मानमेव वा आत्मकः परो वात्र स्वीयपारक्य एव वा स्वपराभिनिवेशेन विना ज्ञानेन देहिना। अतः अतः शोचत शोक करो माँ मत यूयम तुम सब परम अन्य च तथा आत्मानम अपने आप एव निश्चय ही वा अथवा कह कौन आत्मा अपना कह कौन परह दूसरा वा अथवा अत्र इस भौतिक जगत में स्वीय अपना पारक्य अन्यों के लिए एव निसंदेह वा अथवा स्वपर अभिनिवेशेन अपने तथा औरों के देहात्म बुद्धि में लीन होने से बिना अलावा अज्ञानेन ज्ञान का अभाव देहिना समस्त जीवधारियों का। अनुवाद पढ़ता हूँ श्री प्रभुपाद द्वारा, श्री प्रभुपाद की। अतएव दोहराइए मेरे पीछे, अतएव तुम में से किसी को भी शरीर क्षति के लिए चाहे तुम्हारा अपना शरीर हो या अन्यों का हो शोक संतप्त नहीं होना चाहिए। यह तो केवल अज्ञान है जिससे मनुष्य यह सोचकर शारीरिक भेदभाव बरतता है कि मैं कौन हूँ, अन्य लोग कौन हैं, मेरा क्या है और उनका क्या है। तात्पर्य पढ़ता हूँ, कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। इस भौतिक जगत में आत्म संरक्षण की धारणा प्रकृति का पहला नियम है। इस धारणा के अनुसार मनुष्य पहले अपनी निजी सुरक्षा में रुचि लेता है, तब समाज, मित्रता, प्रेम, राष्ट्रीयता आदि आदि पर विचार करता है, क्योंकि ये सब देहात्म बुद्धि एवं आत्मज्ञान के अभाव से ही उत्पन्न हैं। यह अज्ञान कहलाता है। जब तक मानव समाज अंधकार तथा अज्ञान में है, तब तक लोग देहात्म बुद्धि के कारण बड़ी बड़ी तैयारियां करते हैं। प्रहलाद महाराज ने इसे भरम कहा है। भौतिकतावादी धारणा में आधुनिक सभ्यता बड़ी बड़ी सड़कों, घरों, मिलों तथा फैक्ट्रियों के लिए बृहद आयोजन करती है और सभ्यता की उन्नति के विषय में मनुष्य की यही धारणा है। लेकिन लोग ये नहीं जानते कि वे स्वयं किसी भी क्षण दृश्य से बाहर किए जा सकते हैं और ऐसे शरीर ग्रहण करने के लिए बाध्य हो सकते हैं जिन्हें विशाल घरों, महलों, सड़कों तथा स्वचालित यानों से कोई सरोकार ना हो। अतः जब अर्जुन अपने संबंधियों को लेकर देहात बुद्धि में पड़ा सोच रहा था, तब कृष्ण ने तुरंत ही उसे यह कहकर प्रताड़ित किया, उतस्तवा कश्मलम मिदम विश्मे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम। यह देहात बुद्धि अनारियों को शोभा देती है जिसका ज्ञान बड़ा चढ़ा नहीं होता। आर्य सभ्यता आध्यात्मिक ज्ञान में बड़ी चढ़ी होती है, किंतु कोई आर्य का ठप्पा लगाकर आर्य नहीं बनता। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में गहन अंधकार में रहकर कोई अपने को आर्य घोषित करे तो वह अनार्य है। इस प्रसंग में श्रील माध्वाचार्य ने ब्रह्म वैवर पुराण से निम्नलिखित उदाहरण दिए हुए हैं। का आत्मा कह पर इति देहाद अपेक्षया ना ही देहादिरात्मा स्या न च शत्रु उदितर। अतः देहिक वृद्धो वा क्षय वा किम प्रयोजनम, यस्तु देह गतो जीवः स ही नाशम न गच्छति। तथा शत्रु विवृद्धो च स्वनाशे शोचनम कुतः, देहादि व्यक्तिरिक्तो च जीवशो प्रति जानता। अतः आत्मविवृद्धिस्तु वासुदेव रति स्थिरा शत्रुनाशस्त ज्ञानाशो नान्य कथंचना। इसका भाव यह है कि जब तक हम इस मनुष्य के शरीर में हैं, हमारा कर्तव्य है कि शरीर के भीतर आत्मा को समझें। शरीर आत्मा नहीं है, हम शरीर से भिन्न हैं। अतः देहात बुद्धि के रूप में मित्रों, शत्रुओं तथा जिम्मेदारियों का कोई प्रश्न नहीं उठता। किसी को भी इसके विषय में अधिक उत्सुक नहीं होना चाहिए। शरीर शिशुता से बाल्यावस्था और बाल्यावस्था से वृद्धावस्था में तम मृत्यु में बदल रहा है। प्रत्युत मनुष्य के शरीर के भीतर स्थित आत्मा के विषय में तथा भव बंधन से आत्मा को छुड़ाने के विषय में अत्यंत गंभीर रहना चाहिए। शरीर के भीतर का जीव कभी विनष्ट नहीं होता। अतः मनुष्य को ये जान लेना चाहिए कि उसके लाख दोस्त या दुश्मन हों, ना तो दोस्त सहायता कर सकते हैं ना ही दुश्मन कोई हानि पहुँचा सकते हैं। मनुष्य को जानना चाहिए कि वह आत्मा है, अहम ब्रह्मास्मि, और आत्मा की स्वाभाविक स्थिति शरीर में होने वाले परिवर्तनों से अप्रभावित होती रहती है। सभी दशाओं में प्रत्येक व्यक्ति को आत्मा के रूप में भगवान विष्णु का भक्त होना चाहिए और उसे शारीरिक संबंधों यथा दोस्त या दुश्मनों की परवाह नहीं करनी चाहिए। हमें यह जान लेना चाहिए कि देहात्म बुद्धि में ना तो हम स्वयं ना हमारे शत्रु कभी मारे जाते हैं। हरे कृष्ण। अतएव तुम में से किसी को भी शरीर क्षति के लिए, चाहे तुम्हारा अपना शरीर हो या अन्यों का हो, शोक संतप्त नहीं होना चाहिए। तो शरीर क्षति के लिए यहाँ पे दो बातें कही गई कि शोक संतप्त नहीं होना चाहिए। रूपा जी लिख रहे हैं, चाहे तुम्हारा अपना शरीर हो या अन्यों का हो, तो शरीर की क्षति का क्या अर्थ है? दो चीजें आती हैं इसके अंदर। क्षत का मतलब होता है चोट लगना, क्षत विक्षत हो जाना, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल चोट लगी, अंग प्रत्यंग सारे खराब हो गए या गड़बड़ हो गया सबसे। तो यहां पर जो शोक प्रकट हो रहा है वो किस कंटेक्स्ट में हो रहा है? संदेश जो मिल रहा है, जो चर्चा चल रही है, वो किस कंटेक्स्ट में चल रही है? चोट है या उससे बढ़कर कुछ है? क्या है उससे बढ़कर? मृत्यु। तो यहां पर जो है, जब शरीर क्षति की बात हो रही है, तो यहां दोनों की बात हो रही है, चोट भी है अर्थात आपको तकलीफ हो रही है, कष्ट हो रहा है, परेशानी हो रही है, और प्लस साथ में मृत्यु की बात हो रही है। अगर हम केवल मृत्यु लेते हैं तो सेकंड पार्ट जो है लाइन का वो अप्रासंगिक हो जाएगा। क्या है कि चाहे तुम्हारा अपना शरीर हो, जब मेरी मृत्यु ही हो गई है तो मैं शोक संतप्त कैसे होऊंगा? शोक करूंगा क्या? जब मैं मृत्यु को प्राप्त हो गया तो मैं अपने बारे में मृत्यु के बाद शोक कर सकता हूं क्या? हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। अन्यों के मृत्यु में मैं शोक संतप्त ना हूं, यह बात हो सकती है, परंतु अपनी मृत्यु के बाद मैं शोक संतप्त ना हूं यह बात नहीं हो सकती। इसलिए जब यहां पर जो है शब्द इस्तेमाल किया गया है शरीर क्षति, ये दोनों के लिए इस्तेमाल किया गया है कि आपका शरीर क्षत विक्षत हो जाए अर्थात चोट खा जाए, विकलांग हो जाओ या कोई और तकलीफ हो जाए, उसके लिए भी और मृत्यु के लिए भी। मृत्यु के बाद शोक संतप्त नहीं होना है किसी दूसरे की मृत्यु के बाद, परंतु अगर अपना शरीर क्षत विक्षित होता है या दूसरे का शरीर क्षत विक्षित होता है, उन दोनों कंडीशंस के अंदर आप अलाइव हो तो आपको शोक संतप्त नहीं होना। यही बात जो है भगवान भगवत गीता के अंदर दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक अर्जुन को जब ज्ञान देते हैं, सांख्य योग का ज्ञान दिया जा रहा है, शरीर और आत्मा का भेद बताया जा रहा है, तब भगवान यही बात कहते हैं कि शोक नहीं करना चाहिए। अशोच्यान अन्व शोचस्तम प्रज्ञावादांश भाष से गता सुना शनान शोचंती पंडिता, कि जो अभी जीवित हैं उनके लिए भी शोक नहीं करना है और जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करना, दोनों के लिए शोक न करने की बात की है। क्यों? दोनों के लिए बात की है। उसके अगले श्लोकों में जाके आता है कि आत्मा का साइज क्या है, उसको अपरिमेय मापा नहीं जा सकता। तो कितना साइज बताया, कल्पना कीजिए, कल्पना कल्पितस्य उसमें शब्द आया है, कल्पना कीजिए कि एक बाल की नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर आत्मा का साइज है, कल्पना कीजिए। अब इतनी जो छोटी सी, इतनी जो है सूक्ष्म आत्मा है जो आपको दिख नहीं रही, जो विजिबल नहीं है, इसका आपको जो है इन चक्षुओं से आप देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं चेतना के माध्यम से। चेतना है तो आत्मा है। तो जब शोक न करने की बात आती है तो इसलिए आती है कि वो जो आत्मा है वो मारी नहीं जा सकती, आत्मा का अंत नहीं होता, आत्मा मरती नहीं है। तो जो लोग यहाँ जो प्रभुपाद जी रिपीट कर रहे हैं देहात्म बुद्धि देहात्म बुद्धि देहात्म बुद्धि, हर ऑलमोस्ट ऑल पूरी भगवत गीता भागवतम में देहात्म बुद्धि की चर्चा हो रही है, इस पर बहुत एम्फेसिस दिया गया है, बहुत जोर दिया गया है, इसका क्या अर्थ है? देहात्म बुद्धि से क्या अर्थ निकलते हैं? मतलब बुद्धि में प्रॉब्लम है कि देह में प्रॉब्लम है कि आत्मा में प्रॉब्लम है? इसमें प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है बुद्धि में? बुद्धि में प्रॉब्लम है कि देह और आत्मा का भेद नहीं समझती। बेसिस क्या है कि देह और आत्मा दोनों का भेद नहीं समझती है, दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर पाती है। तो जब भेद नहीं समझती है तो रिजल्ट क्या है, क्या रिजल्ट निकल के आता है? कि दोनों एक हैं। देहात्म बुद्धि का अर्थ यह है, जैसे प्रभु जी ने भी कहा कि अपने को देह समझ लेना। अपना कौन है इसके अंदर? अपना देह है कि अपना आत्मा है? तो मतलब आत्मा को देह समझ लेना, मतलब देह और आत्मा में भेद स्वीकार न करना, अर्थात देह ही आत्मा है और आत्मा ही देह है, इस बात को लेकर चलना देहात बुद्धि कहलाता है। कि बुद्धि आपकी सही डायरेक्शन में कार्य नहीं कर रही। बुद्धि का कार्य क्या है? बुद्धि का कार्य क्या है, बुद्धि क्या करती है? बुद्धि का कार्य है सबसे पहला ज्ञान प्राप्त करना। निर्णय तो तभी लेगी ना जब ज्ञान होगा। तो बुद्धि सबसे पहले क्या कार्य करती है? आपको स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर बुद्धू नहीं, बुद्धू है, बिना बुद्धि के बेवकूफ है, कुछ नहीं आता। आप एक बार में बताने में समझ जाते हो, वेरी इंटेलिजेंट। तो क्या है कि आपकी जो ज्ञान की रिसेप्शन है, ज्ञान को जो प्राप्त करने का जो आपका कमांड है, वो आपकी बुद्धि पे डिपेंड करता है कि आपकी बुद्धि किस प्रकार की है। बुद्धि का पहला कार्य है ज्ञान को प्राप्त करना। दूसरा कार्य क्या है बुद्धि? दूसरा कार्य क्या करती है? ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो भी आगे आगे बात, वो जरा थोड़ी हाई लेवल बात है। उस ज्ञान को इस्तेमाल कैसे करना है, ये भी तो बुद्धि का कार्य है। पढ़ पढ़ के जो है पोथियां काली पीली कर दी, परंतु उस ज्ञान को इस्तेमाल तो किया ही नहीं। मैं आज मंदिर गया था, वहां पर एक महात्मा जी भगवत गीता पे कथा कर रहे थे। उन्होंने उस कथा के अंदर ये बताया कि भगवान को भोग लगाए बगैर अगर कोई व्यक्ति भोजन को ग्रहण करता है, अर्थात यज्ञ में विष्णु को अर्पित नहीं करता है, उसके बिना भोजन को ग्रहण करता है तो पाप खाता है, और अगर भोजन को जो खाना बनाया है उसको भगवान को भोग लगा के प्रसाद के रूप में खाता है तो पापों से मुक्त हो जाता है। ये बात मुझे समझ में आ गई। एक साल तक रोज सुनते जा रहे हैं, रोज। एक साल के बाद पूछा, भाई भगवान को भोग लगाते हो? नहीं। क्यों? नहीं, क्यों का जवाब नहीं है। हालत कैसी है? हालत उस ब्याज और तोतों के समान है। एक ब्याज जो है उसके पास तोते थे, कैद करके बेचने के लिए ले जा रहा था, तो एक महात्मा जी ने वो तोते उससे ले लिए और पिंजरा लेके अपने आश्रम में आ गए, और आश्रम में आने के बाद जो है उन्होंने तोतों को जो है बोलना सिखाया। क्या बोलना सिखाया? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। ज्ञान प्राप्त हो गया, मतलब रटना शुरू कर दिया, रट्टा लगा लिया। एकदम तोते जो है 6 महीने में, साल भर में खूब ट्रेंड हो गए बोलने के अंदर। अब महात्मा जी ने कहा, अब तोते एक्सपर्ट हो गए हैं, अब इनको पिंजरे से बाहर निकाल के खुले आकाश में छोड़ देना चाहिए, अब शिकारी के जाल में नहीं फंसेंगे। तो उन्होंने तोतों को छोड़ दिया, और थोड़ी देर के बाद तोते जो है एक जाल बिछा हुआ था, उस पर दाना पड़ा हुआ था, वहां जाके बैठे, और बैठे बैठे दाना चुग भी रहे हैं और गाना भी गा रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। तो ज्ञान तो प्राप्त हुआ, हमें भी ज्ञान प्राप्त होता है, परंतु उस ज्ञान को क्या हम ठीक इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते? तो बुद्धि का दूसरा कार्य क्या है कि ज्ञान जो प्राप्त हुआ है उस ज्ञान को इस्तेमाल करना। अब इसमें एक शब्द आता है विवेक, विवेकमयी बुद्धि। वो विवेक क्या है? व्हाट इज दैट विवेक? मतलब आपके पास बुद्धि तो है, पर बुद्धि की एक जो हायर क्वालिटी है वो विवेक कहलाती है। हायर क्वालिटी क्या है? कि डिस्क्रिमिनेशन राइट एंड रॉन्ग में, गलत में और सही में भेद करना, ये भी बुद्धि का कार्य है। पर उसके लिए बुद्धि जो है आपकी परिष्कृत चाहिए, एडवांस चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए हायर लेवल के। जब आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है, आप फैसला कर पाते हो सत क्या है असत क्या है, कर्तव्य क्या है अकर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, ये जब भेद आ जाता है तब आप कहते हो कि मेरी बुद्धि जो है विवेकमय है। यही बात भगवान कहते हैं, यत्ता यपि कौनता है पुरुषस्य विपश्यता इंद्रियानि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसवमाना, कि इंद्रिया इतनी प्रबल और वेगवान है कि उस विवेकी पुरुष के मन को भी हर लेती हैं जो इंद्रियों को वश में करने का अभ्यास कर रहा। विवेकी पुरुष को मतलब वो समझता है कि इंद्रियां जो हैं गलत कार्य कर रही हैं, गलत चीज के प्रति आकृष्ट हो जाती हैं, विषय भोग जो हैं बड़े ही गलत हैं, परंतु इन सब के बावजूद उसका मन जो है उनके प्रति आकृष्ट हो जाता है, उस रास्ते पर लग जाता है। मतलब बुद्धि के द्वारा डिस्क्रिमिनेट करते हुए भी वो एक्चुअल डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाता, उसमें फंस जाता है। तो देहात बुद्धि के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है जो यहाँ चर्चा आ रही, कि जब व्यक्ति आत्मा और शरीर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं आप आमतौर पे लोग मृत्यु के बाद? दो शब्द इस्तेमाल करते हैं, दो सेंटेंस, दो वाक्य इस्तेमाल करते हैं। नहीं नहीं, वो तो साधारण बात है, थोड़ा उससे एडवांस चले। ये स्वर्ग से धार गया, नरक से धारने की कोई बात नहीं करता। किसी ने आज तक कहा बदमाश था, लुच्चा था, लफंगा था, फलाना फलाना, बड़े बुरे काम करता था, ये नरक से धार गया? सब लोग क्या कहते हैं? स्वर्ग से धार गया। पहली बात ये। दूसरे शब्द क्या इस्तेमाल करते हैं? कि ये प्रभु के चरणों में लीन हो गया, भगवान के चरण कमलों में ये लीन हो गया, अर्थात ये अब भगवान में जाके मिल गया। मतलब भगवान ने गेट खोल रखे हैं, जो मर्जी अंदर चला आए, चाहे वो तमोगुण में हो, चाहे वो रजोगुण में हो, चाहे सतोगुण में हो, उसके लिए गेट खुले हैं कि जब भाई तुम मरे हो तो सीधा मेरे घर में आ जाओ और मेरे घर में आके मेरे साथ रहो। देहात बुद्धि के अंदर आप जो है आत्मा और शरीर का चूंकि भेद नहीं कर पाते हैं, इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर जो है लिखते हैं बड़ी स्पष्ट बात कि उसको मालूम नहीं है कि उसको आत्मा के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि वो आत्मा का एग्जिस्टेंस ही स्वीकार नहीं करता। वो नाम शब्द जानता है कि आत्मा है, वो ये भी कहता है मैं आत्मा हूं, फिर ये कहता है कि देह और आत्मा में कोई फर्क नहीं है। वो उस लेवल पे आके आत्मा को और देह को अलग नहीं कर पाता है कि आत्मा अलग है और देह अलग। वो ये कहता है कि सब कुछ एक ही है। अब उसमें क्या है कि उसकी बुद्धि के अंदर जो है आत्मा के लिए कुछ भी करने वाली बात आती नहीं, क्योंकि आत्मा के बारे में पता ही नहीं है। आत्मा के बारे में ज्ञान हो तब तो उसको पता लगे होता क्या है। व्यक्ति के पास चार चीजें हैं, साधारण भाषा में एक किसी ने रूपक बनाया है। रूपक में कहा गया है कि व्यक्ति के पास जो है प्रत्येक व्यक्ति के पास चार पत्नियां होती हैं, 4 wives। वो चौथी वाइफ से बड़ा प्रेम करता है, पहली 3 को उसने हौले हौले करके इग्नोर कर दिया, छोड़ दिया, चौथी पत्नी से बहुत प्रेम करता है, अति प्रेम करता। पहली को तो उसने बिल्कुल ही निकृष्ट नकारा, बिल्कुल बेकार करके उसको छोड़ दिया। मृत्यु के निकट आ गया तो उसके पास एक एक करके चारों पत्नियों से पूछता है कि मैं मरने वाला हूं तो क्या तुम मेरा साथ दोगी? तो एक पत्नी ने कहा नो चांस, आपके साथ देने का कोई चांस नहीं। दूसरी कहती हाँ मैं आपको शमशान घाट तक पहुंचा दूंगी, उसके आगे साथ चलने का कोई चांस नहीं। तीसरी कहती है अच्छा अच्छा अब तुम मरने वाले हो, चलो मैं तुम्हारे मरने के बाद दूसरा विवाह कर लूंगी, अलमेरी हरी मैरी, और चौथी बेचारी सुगड़ी मरी मराई कहती है ठीक है मैं तो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकती, जहां तुम चलोगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो पहली पत्नी कौन थी? वॉज द फर्स्ट वाइफ। नहीं, पहली मतलब जिसने पहली साथ जाने को तैयार है, दूसरी उसको जो है दोबारा शादी करने के लिए तैयार है, तीसरी शमशान घाट तक पहुंचाने के तैयार है, और चौथी शमशान घाट में जाकर भी साथ जाने को तैयार नहीं। तो रूपक में उसने ये समझाने की कोशिश करी है कि चौथी पत्नी है शरीर, ये शरीर जो है आगे बदला जाएगा, सेम बॉडी नहीं जा सकती, नया शरीर मिलेगा ना, ये शरीर आगे जाने को तैयार नहीं है, शरीर यहीं समाप्त है, इसके आगे मैं आपके साथ नहीं जा सकती, दिस इज द एंड ऑफ इट। तीसरी पत्नी कह रही है कि मैं आपको शमशान घाट तक पहुंचा दूंगी। वो कौन है? रिश्तेदार, संबंधी, नातेदार, मित्र, समाज, देश के लोग, जो यहां प्रभुपाद जी लिख रहे हैं बड़े सुंदर तरीके से कि समाज, मित्रता, प्रेम, राष्ट्रता आदि पे विचार करता रहता है, हमेशा उसके बारे में व्यस्त रहता है। जो संबंधी गण है वो आपको दोस्त, मित्र, रिश्तेदार शमशान घाट तक पहुंचाएंगे, उसके बाद वापस आ जाएंगे, उससे आगे कुछ नहीं। जो दूसरी थी वो है धन संपत्ति, प्रॉपर्टी, मकान, बिल्डिंग्स, वो कहते हैं तुम्हारे मरने के बाद मैं दूसरे की हो जाऊंगी, पुत्र की, पुत्री की, पत्नी की, रिश्तेदारों की, मतलब मेरा तुमसे संबंध समाप्त हो जाएगा, अब मैं तुम्हारे साथ ही दोबारा शादी हो जाएगी मेरी, दूसरे की बन जाऊंगी मैं। और चौथी जो है बेचारी आत्मा, जिसके बारे में सोचता ही नहीं, जिसको उसने इग्नोर कर रखा है, जिसको उसने छोड़ रखा है, वो कहती तुम जो भी शरीर धारण करोगे उसके अंदर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। कहने का मतलब यह है कि हम लोग जो है जो कि अज्ञान में है, हमें ज्ञान नहीं है कि आत्मा का और शरीर का भेद क्या है और आत्मा का डेस्टिनेशन क्या है, आत्मा कहाँ से आई है और उसे कहाँ एक्चुअल में जाना चाहिए। हम लोग अपनी देहात बुद्धि के कारण अपने कर्मों में फंसे रहते हैं और उन कर्मों के फलों को भोगने के लिए हम लोग जो है 84 लाख योनियों का चक्र काटते रहते हैं बार 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 बार, क्योंकि कर्म फल जो है अनादि, मतलब उनकी बिगिनिंग कब हुई है ये कोई नहीं जानता। इसीलिए जो है प्रभुपाद जी शब्द इस्तेमाल करते हैं अनादि कर्म फले, भागवतम में कई जगह इस्तेमाल किया है कि आपके कर्म फल टाइम इमेमोरियल, मतलब कब स्टार्ट हुए हैं ये कोई नहीं जानता, कब समाप्त होंगे, कब समाप्त होंगे ये भी नहीं जानता, परंतु समाप्त करने का प्रयास कर सकता है। यू कैन प्रैक्टिस। आप अगर हम लोग जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस में बैठे हुए हैं, मंदिर में बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, जप करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं वगैरह वगैरह सारे कार्य करते हैं, तो किस लिए कर रहे हैं? पर्पस क्या है? पर्पस है कि अगर भगवान का प्रेम मिल जाता है तो उस प्रेम को प्राप्त करने के बाद क्या होगा, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ गेटिंग कृष्ण प्रेमा, भगवान का प्रेम प्राप्त करने का फल क्या है, क्या फल है? आप बस में बैठे, जान पहचान का व्यक्ति मिल गया, आओ आओ यहां बैठ जाओ, टाइट है, वो शेयर कर लेते हैं, कोई बात नहीं, आप उसको अपने बुला के अपने पास बिठाते हो, तो जान पहचान का प्रेम नहीं है। प्रेम होगा तो आप उसके लिए सीट खाली कर दो, तुम बैठो मैं खड़ा हो जाता हूं। जब प्रेम होगा, जब भगवान से प्रेम होगा, तो भगवान कहेंगे जहां मैं हूं वहां तू आ जा, मेरे धाम में आ जा, कम बैक टू माई अबोर्ड। वो कब होगा? जब भगवान से प्रेम होगा। तो प्रेम प्राप्त करने के लिए हम लोग यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, उसका फल क्या है कि भगवान के धाम जाने के बाद आप 84 लाख स्पीशीज से बाहर निकल जाते हैं, फिर आपको जो है पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम इस चक्र में नहीं घूमना पड़ता, इससे आपका छुटकारा हो जाता है। तो यहाँ पर जो है एक बड़ी अच्छी बात कही है कि मनुष्य पहले अपनी निजी सुरक्षा में रुचि लेता है, तो एक निजी और दूसरा सुरक्षा, तो ये बात जो है दो लेवल पे समझने की है। जो लोग अज्ञान में हैं, हु आर नॉट नॉलेजफुल, जिनको ज्ञान नहीं है, उनके लिए निजी सुरक्षा क्या है? इंश्योरेंस, समथिंग लाइक दिस, कि मैं अगर बीमार हो जाऊं, विकलांग हो जाऊं, तो मेरे पास धन संपत्ति होनी चाहिए जिससे मेरा गुजारा चलता रहे, तो आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता। मेरे पास अपना मकान हो जाए, अपनी छत हो जाए, तो मुझे किसी को पैसा ना देना पड़े, उसके लिए न कमाना पड़े, इसके लिए सुरक्षा महसूस करता। अपनी गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, फार्म हाउस हो जाए, बच्चे हो जाए जो मेरी सुरक्षा करेंगे, ओल्ड एज में मेरी केयर लेंगे, तो ये उसकी निजी सुरक्षा है। पर एक्चुअल में सुरक्षा क्या है? एक्चुअल में सुरक्षा है कि आपको दोबारा से जन्म नहीं लेना, इसका प्रयास करना है, क्योंकि जन्म होता है तो मृत्यु होती है, जन्म होता है तो बुढ़ापा आता है, जन्म होता है तो बीमारी आती है, ये प्रयास आपको करना है, ये आपकी एक्चुअल सुरक्षा है। और एक्चुअल में निजी सुरक्षा भी है, क्योंकि जब आप आध्यात्मिक लेवल पे जाते हैं तब निजी सुरक्षा ये है, जब भौतिक लेवल पे जाते हैं तो निजी सुरक्षा है आपके शरीर के लिए कि मुझे ये मिलना चाहिए। इसके बाद जो है यहाँ पे लाइन प्रभुजी ने बड़ी सुंदर इस्तेमाल करी है, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि स्वयं किसी भी क्षण दृश्य से बाहर किए जा सकते हैं और ऐसे शरीर ग्रहण करने के लिए बाध्य हो सकते हैं जिन्हें विशाल घरों, महलों, सड़कों तथा स्वचालित यानों से कोई सरोकार ना हो, कि आपकी मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है। आप जो है ये क्लेम नहीं कर सकते, आज के युग के अंदर जो है ये असंभव है, ये पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं जो है 16 सितंबर 2019 को दोपहर में 2:13:15 में मृत्यु को प्राप्त होऊंगा। है पॉसिबल? यू कैन डाई एनी मोमेंट, एक क्षण में खत्म हो सकते हो, बैठे बैठे हार्ट अटैक हो सकता। और क्या होगा, ये मकान, ये बंगले, ये जहाज, ये बड़ी बड़ी कोठियां, बिल्डिंगें, पोस्ट आपकी तुरंत समाप्त। और यहाँ प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर शब्द लिखा है, किसी भी क्षण दृश्य से बाहर किए जा सकते हैं, एनी मोमेंट यू आर आउट ऑफ दिस सीन, इस वर्ल्ड से बाहर। फिर यहाँ पे एक बड़ी सुंदर लाइन इस्तेमाल करी है, हम शरीर से भिन्न हैं, अतः देहात बुद्धि के रूप में मित्रों, शत्रुओं और जिम्मेदारियों का कोई प्रश्न नहीं उठता, किसी को इसके विषय में अधिक उत्सुक नहीं होना चाहिए। उत्सुक होना और अधिक उत्सुक होना दोनों में भेद है। उत्सुक का मतलब है एज ए पार्ट ऑफ माई ड्यूटी, मैं गृहस्थ में हूं तो मेरी गृहस्थ होने के नाते कुछ जिम्मेदारियां हैं, ब्रह्मचर्य में हूं उसके नाते मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, मैं उन जिम्मेदारियों को निभाऊंगा, ऐसा मेरा मेरे में एक उत्सुकता होनी चाहिए। पर टोटली उसी में एब्जॉर्ब हो जाऊंगा, उसी के अलावा मैं और कोई बात सोचूंगा नहीं, उसी के अलावा और किसी बात में नहीं जाऊंगा, ये मुझे नहीं करना है, अधिक उत्सुकता। अब एक व्यक्ति जो है घर के अंदर रहता है, उसके पिता भी हैं, माता भी हैं, पुत्र भी है, पत्नी भी है, तो ये तो है नहीं उनके प्रति जिम्मेदारी नहीं निभाएगा, उनको छोड़ के चला जाएगा, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कर्तव्य है। परंतु आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते समय आप वह अपनी आत्मा के बारे में बिल्कुल भूल जाएं कि मेरी आत्मा का क्या करना चाहिए, उसको मुझे कैसे भगवान के चरणों की सेवा में लगाना है, किस तरह मेरे को जो है भगवत धाम प्राप्त करने का प्रयास करना है, वो पार्ट आपको भूलना नहीं है, उस पर अपने आप को बरकरार रखना है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों के लिए अधिक उत्सुक नहीं होना चाहिए। जैसे लोग कहते हैं नर सेवा नारायण सेवा, हम तो जी मशीनें बांट देते हैं, कपड़े बांट देते हैं, हम तो इसी में खुश हैं, क्योंकि हम तो नर सेवा कर रहे हैं, इसका मतलब है नारायण सेवा कर रहे हैं, आत्मा के बारे में कुछ नहीं कर रहे। दैट इज अ पार्ट ऑफ योर ड्यूटी। आपके पास एक्सेस पैसा है, आप उसकी मशीनें खरीदिए, भगवान को समर्पित कीजिए, उसके बाद दान दीजिए, कोई आपको रोकता नहीं, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर ड्यूटी, कर सकते हैं आप, परंतु आत्मा के बारे में न सोचना ये गलत कार्य है। और फिर यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं, ना तो दोस्त सहायता कर सकते हैं, ना ही दुश्मन को हानि पहुंचा सकते हैं, मनुष्य को जानना चाहिए कि वह आत्मा है। ये जो पार्ट है ज्ञान का, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको ये ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्लियर कट मैसेज होना चाहिए सबके मन के अंदर, ज्ञान प्राप्त होना चाहिए कि आत्मा और शरीर में भेद है, मैं आत्मा हूँ और मैंने अपने कर्मों के भोग के लिए इस शरीर को धारण किया है, परंतु जो भगवान ने मुझे बुद्धि दी है उस बुद्धि का प्रयोग मुझे करना है इस आत्मा को अल्टीमेट लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए, और अल्टीमेट लक्ष्य है भगवान के धाम में प्रवेश करना, भगवान की सेवा भगवान के धाम में जाके करनी, उनके अनुरूप उनके अनुसार जैसी वो चाहते हैं उस प्रकार से। मुझे इस 84 लाख योनियों के चक्र से अपने आप को बाहर निकालना है, ये मेरे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। यहाँ मुझे भेद समझना है कि आत्मा और शरीर में क्या भेद है। हरे कृष्णा।
श्रील प्रभुपाद की।